سورہ النساء کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے آج. پچھلی دفعہ یاد ہوگا کہ ایک بات چل رہی تھی کہ تم اپنی بیویوں کو اس وجہ سے نہ روک کے رکھو کہ وہ تم نے ان کو کوئی پیسہ دے رکھا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر طلاق دیں گے, اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم نے رکھنا ہے ان کو تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے, کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص تمہیں برا لگ رہا ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اس میں خیر ہو. اب اس کے باوجود کہ وہ خیر ہو سکتا ہے, لیکن ایک میاں بیوی یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, طلاق دے دینی چاہیے یا الگ ہو جانا چاہیے. اب اس کو مضمون بنایا تو گویا جب آدمی ایک دوسرے کو پسند نہ کر رہے ہوں تو تعلق نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا ان اردتم استبدال زوج مکان زوج, کہ اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ اس خاتون سے جو پسند نہیں رہی یا بیوی شوہر کے بارے میں, دونوں یہ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب یہ نکاح ختم کر دینا چاہیے اور ایک دوسری شادی کر لینی چاہیے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ کرو کہ یہ شادی چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے, وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور صورتحال یہ ہو کہ تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے, قنطار ڈھیروں مال, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو اس میں سے ایک چیز بھی تم نہیں لوگے, یعنی جو کچھ دے دیا ہے وہ اب تم طلاق دے رہے ہو تو اس موقع پر ان سے لینا منع ہے. اوپر فرمایا تھا کہ تب منع ہے, عام حالات میں منع ہے, لیکن اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کر دیتی ہے, زنا کا ارتکاب کر دیتی ہے جو ثابت بھی ہو جائے, تو پھر تم اپنا مال اس سے واپس لے سکتے ہو. اب یہاں یہ فرمایا کہ تم قنطار یعنی ڈھیروں مال دے رکھا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لوگے. تو فرمایا اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا, تو کیا تم اپنا مال جھوٹا الزام لگا کر لینا چاہو گے؟ یعنی اب ایک ہی صورت رہ جاتی نا کہ وہ اس نے کوئی بدکاری کی ہے, تو ظاہر ہے کہ اب اگر بدکاری نہیں کی ہے اس نے تو پھر الزام لگاؤ گے, تو یہ کبیرہ گناہ ہے, وہ اسمن مبینہ, اور یہ واضح واضح کھلا گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا تم نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیوی کو جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا جا سکتا طلاق کے موقع پر. ہمارے ہاں پہلے بھی شاید میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں سورہ البقرہ کے درس میں بھی, کہ خلا میں بھی بڑا ظالمانہ قانون پاکستان میں بنا دیا گیا ہے کہ اسے حق مہر تک واپس لے لیتے ہیں. یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیوی کو حق مہر جو دیا ہوا ہے وہ بھی, جو بعد میں کوئی چیزیں دی ہیں, کوئی زیورات دے رکھے ہیں, کوئی کپڑے دے رکھے ہیں, کچھ فرنیچر لے کر دیا ہے, یا جو چیزیں اس کی بلانگنگس کے طور پہ آپ نے اس کو لے کر دی ہیں, وہ واپس نہیں لی جا سکتی. ہاں اپنی مرضی سے, مثال کے طور پر ایک خاتون کو اس کے شوہر نے اچھے دنوں میں زمینیں نام لگا دی ہوئی ہیں, گھر نام لگا دیے ہوئے ہیں, تو اب وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا میاں اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہا, تو وہ اپنی مرضی سے کچھ چھوڑے تو چھوڑے, ہم زبردستی اس سے نہیں لے سکتے. لیکن حق مہر تو بالکل کوئی حق نہیں ہے, وہ بالکل کسی صورت میں بھی واپس نہیں لیا جائے گا. ہاں وہ معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ناانصافی ہے کہ ہم خلے کی صورت میں حق مہر بھی چھین لیتے ہیں اس سے. تو اب یہ بالکل منع ہے, بہتان یعنی صرف بدکاری, ایک ہی صورت ہے کہ بدکاری کی ہو بیوی نے, تو تب آپ اس سے اپنی دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتے ہیں, ورنہ اس کی کوئی امکان نہیں ہے. تو بہتان لگانا اور پیسہ اس طرح سے بٹورنا اپنی بیوی سے, اس کو اس میں مبین قرار دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان, آگے چل کر اور بھی اس کو اللہ تعالیٰ واضح کریں گے, لیکن پہلے اس کی تمہید کے طور پر سمجھ لیجئے کہ بیوی اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں دراصل شوہر کے یہ فریضے میں شامل ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے گا, اس کو چیزیں لا کر دے گا, اس کو تحفے تحائف دے گا, ये अब दे देने के मानी में देना है, यानी उसको मालिक बना देना है। ये एक सादा देना नहीं है कि आज मैंने दिया तो कल वापस ले लूँगा, नहीं, ये खास तौर से तलाक और खुला के मौके पर। तो पहली ये बात बताई कि क्या तुम झूठा इल्ज़ाम लगाकर अब पैसे लोगे, उससे वापस लोगे अपनी चीज़ें दी हुई। दूसरा फरमाया, व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु व कद अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, तुम उनसे ये चीज़ें कैसे ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के बिल्कुल खुल चुके हो, एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो चुके हो। इसका क्या मतलब है? ये जुमला बड़ा अजीब सा है कि पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी बीवी थी, हम भी शोहर थे, दोनों निकाह में रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब तो निकाह टूट रहा है, तो उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम कैसे ले सकते हो जबकि तुम्हारे दरमियान ये रिश्ता वजूद में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि इस रिश्ते के वजूद में आने से कुछ ऐसे हकूक कायम हो जाते हैं जो सिर्फ जौजियत के हकूक नहीं है बल्कि उस माल पर भी हक कायम हो जाता है जो बीवी को दिया गया होता है। ये जुमला ये बता रहा है, कद अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, कि ये ताल्लुक़ ऐसा है कि इसके बाद हक कायम हो जाते हैं। चुनांचे पिछले नशिस्त में हक महर के बारे में एक सवाल हुआ था, उसका जवाब भी इसमें मौजूद है कि दरअसल एक तो मैंने जवाब दिया था कि वो टोकन है, दूसरा इस रिश्ते का हक, कि जिसकी तमहीद भी एक टोकन के तौर पर दिए गए रकम से होगा कि मैं अपनी बीवी को उसके निकाह में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उसके तमाम माली हकूक पूरे करूँगा जो इस रिश्ते का लाजमी तकाजा है, इस रिश्ते का लाजमी तकाजा। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, ये बहुत ही भारी भरकम जुमला है अगर आप देखें कि तुम कोई भी चीज़ वापस नहीं लोगे और तुम ले कैसे सकते हो जबकि तुम्हारा ये रिश्ता कायम हो चुका है। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अहम बात है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जी होती है, बल्कि मौत के मौके मौत तक लोग हक महर अदा ही नहीं करते हैं। और बाज़ घरानों में तो सूरत हाल यह है कि बखीली के साथ उनको ख़र्चा दिया जाता है, उनको कुछ हकूक़ पूरे नहीं किए जाते, वो कपड़े भी अपने रिश्तेदारों से लेकर पहन रही होती है, इस तरह के मामलात भी हो रहे होते हैं। ये नहायत कबीरा गुनाह है, कुरान ने इसको इस मुबीना कहा है। तो इस बाहमी रिश्ते के कायम होने से लफ्जी तर्जमा है तुम एक दूसरे पर खुल चुके हो, एक दूसरे पर बिल्कुल करीब जाकर खुल चुके हो, बिल्कुल करीब जाकर, ये जो मफहूम है ये मियाँ बीवी को इस ताल्लुक़ की तरफ इशारा है कि इसके बाद फिर तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि दी हुई चीज़ों में से वापस लो। वह अखज़ न मिन को मीसाकन गलीजा, अब ये मुआहदा निकाह की तरफ इशारा है कि इन खवातीन ने जिनसे तुम पैसा अब छीनना चाह रहे हो इस मौके पर कि अपन इसको छोड़कर दूसरा शादी करना चाह रहे हो, तो इस मौके पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम कैसे इनसे ये पैसा वापस ले सकते हो जबकि इन्होंने तुमसे बहुत ही मजबूत अहद बांधा हुआ। अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, गलीज़ उर्दू में तो और मानी में होता है, अरबी में पक्के सख्त के मानी में होता है, पत्थर जैसा सख्त। तो अब वो अहद क्या था? वो हक महर वाला अहद था कि तुम मेरा खर्चा उठाओगे, मैं अपने माँ बाप को छोड़ कर तुम्हारे घर आ रही हूँ, ये, और पूरी ज़िंदगी मेरा खर्चा देते रहोगे, मेरे हकूक़ पूरे करोगे, ये मिसाक उन्होंने लिया था। तो अब इससे निकाह की जो अंदर की हकीकतें हैं वो भी वाजे हो रही हैं कि निकाह सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने निकाह पढ़ा और बस लेकर आ गए, नहीं, वो उसके पीछे बड़े अहद मुआहदे हैं जिसको सूरह अल बकरा में बयान किया गया, और आगे भी अल्लाह ताला जब वो अर्रिजाल व कवामुना वाली आयत आएगी तो उसमें अल्लाह ताला इसको वाज़े करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो रिश्ता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर रिश्ता है। दुनिया का आगाज़ इस रिश्ते से हुआ है। जब आदम और हव्वा थे तो उनकी कोई माँ नहीं थी, कोई बाप नहीं था, दो मियाँ बीवी से दुनिया का आगाज़ हुआ है। दुनिया का हकीकी तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता उसके बाद वजूद में आता है, पहले नहीं होता। उस रिश्ते को यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहा है। तो एक मियाँ और एक बीवी से दुनिया का आगाज़ हुआ हुआ है। तो वो मीसा के गलीज पर खड़ा था, और दुनिया ये जो सुल्ब और रहम के रिश्ते कायम होते हैं ये बायोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता वजूद में आता है वो मुआहदे से वजूद में आता है। हम मियाँ और बीवी दोनों दस्तखत करते हैं कि हाँ मैं आपको कबूल करता हूँ, आप मुझे कबूल करती हैं, और मैं इस खर्चे पर इस हक महर के एवज़ शादी कर रहा हूँ। तो हक महर इस वजह से रखा गया। इसको आगे और भी पहलू सामने आएंगे, पीछे भी सूरह अल-बकरा में गुजर चुके हैं। तलाक का जब केस ज़ेर बहस आया था सूरह अल-बकरा में, तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने बताया था कि तुम बीवी से कैसे वापस ले सकते हो, हक़ुन अलल मोहसिनीन, ये तो नेक लोगों पर हक है बीवी का कि उसको पैसा दिया जाए, उसको खर्चा दिया जाए, उसको नान नफका दिया जाए, उसको कोई कपड़े, कोई जेवर, कोई इस तरह की चीज़ें जो आपकी हिम्मत तौफीक के मुताबिक है वो लेकर दी जाए। तो फरमाया व कैफ़ तअख़ुज़ूना हू, तुम ये पैसा वापस ले कैसे सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुल चुके हो और उन्होंने तुमसे एक पक्का मुआहदा भी किया हुआ है। अब निकाह को मिसा के गलीज कहा है, इसके दो और तीन पहलू और भी समझ लीजिए। एक तो पैसे के अतबार से था कि दी हुई चीज़ें वापस नहीं ली जा सकती। दूसरा पहलू यह है कि शादी कोई टेम्परेरी निकाह ताल्लुक नहीं होता, ये दायमी निकाह होता है। हर शादी इसलिए होनी चाहिए कि हम मरने तक मियाँ बीवी रहेंगे। ये अलग बात है कि अगर निभा नहीं हो रहा तो अलहदगी कर ली जाए, वो तलाक एक दी गई है, और हदीस के अल्फाज में वो अबगज़ुल हलाल है, यानी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हलाल चीज़ है। तो दूसरी बात ये हो गई कि निकाह ज़िंदगी भर का अहद है, ज़िंदगी भर साथ रहने का फ़ैसला है, ये पक्का अहद है। और तीसरा पहलू इसमें यह है कि ये जिन हकूक़ व फ़राइज़ का तकाजा करता है वो पूरे करने पड़ेंगे। ये तीन नुक्ते मिसाकन गलीज़ा से वाज़ेह होते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ, चौथा पहलू ये भी समझ लीजिए कि ये रिश्ता सिर्फ अपने जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के लिए नहीं है, ये एक मुकद्दस अहद पर खड़ा है। और ये वो अहद है जो हम खुदा की इजाज़त से, खुदा का नाम लेकर निकाह की सूरत में कायम करते हैं। तो ये अब जो चीज़ें हैं वो इस सूरत में है कि जब आप निकाह ख़त्म करने जा रहे हैं, तलाक देने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या सूरत हाल है। जब रज़ा की हालत हो, रज़ामंदी हो, तो बीवी को दिया हुआ तोहफा वापस भी हो सकता है, वो बेच कर कोई चीज़ अगर ज़रूरत पड़े तो घर के मुश्तरका काम भी किए जा सकते हैं, लेकिन ठीक तलाक के मौके पर आप एक रुपया भी वापस नहीं ले सकते। ये अल्लाह ताला की हदायत है, उसके असबाब अल्लाह ताला ने बता दिए। सिर्फ एक सूरत में वापस ले सकते हैं कि बीवी ने बदकारी कर ली हो, और दूसरी सूरत ये मना करने की जो दो मजीद बातें बताई कि एक ये कि कद अफजा बाज़ुकुम इला बाज़, तुम एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुल चुके हो, बिल्कुल करीब आ चुके हो, इसके बाद तुम्हें पैसा लेना वापस लेना ये जचता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये मिसा के गलीज के ख़िलाफ़ है, पक्के मुआहदे के ख़िलाफ़ है कि आप अहद मुआहदा करें और फिर चीज़ें वापस ले लें, ये हो नहीं सकता। आगे नया हुक्म आ गया है, लेकिन वो शादियों के हवाले ही से है। वला तनकहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ, उन ख़वातीन से निकाह नहीं करोगे जिनका निकाह तुम्हारे बाप से हो चुका है, तुम्हारे आबा से हो चुका है, यानी हमारी सौतेली माँ भी माँ ही की तरह हराम है। और ये सिर्फ निकाह से हुरमत कायम हुई है, रुख्सती हुई है, खलवत हुई है या नहीं हुई, बस निकाह से ये हुरमत कायम हो गई है कि जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है उनसे तुम निकाह नहीं करोगे। ठीक है, तो जो वालिद के अकद में आ गई बस वो हमारे लिए हमेशा के लिए हराम हो गई, वो खातून हमेशा के लिए हराम हो गई। इल्ला मा कद सलफ, सवाए इसके कि जो पहले तुमने गलतियां कर ली हुई हैं कुरान के नाजिल होने से पहले, उसको अल्लाह ताला माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा से ये हरकत तुम नहीं करोगे। तो जो जिन वजूहात से रिश्ते हराम होते हैं कि यहाँ शादी नहीं हो सकती, यानी महरम रिश्ते हो जाते हैं, वो रिश्तों में पहली चीज़ निकाह है। निकाह का होना हराम कर देता है किसी जात को। निकाह का एक आगे भी हुक्म आ जाएगा, लेकिन चूँकि जो हराम करने की वजह हैं या असबाब हैं वो नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो आगे कई रिश्तों में मुश्किल पैदा करते हैं हमें। तो पहली चीज़ है निकाह का होना। अगर किसी आदमी का किसी खातून का निकाह हुआ है तो वो सबके लिए हराम है, उसके साथ कोई शादी का इरादा नहीं कर सकता। जो शादीशुदा खातून है वो सबके लिए हराम है, उसके लिए कोई शादी का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ जो अभी बात आई है वो आगे चल के आ जाएगा जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि वालिद की मनकूहा बेटे पर हराम है। अब उसकी इल्लतें बताई जा रही हैं कि निकाह जो हुरमतें आगे बयान की जा रही हैं, जो यहाँ बयान हुई है उसमें इल्लत क्या है। वो तीन इल्लतें बयान की हैं। इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व सा सबीला। तो कहा कि अपने वालिद की निकाह याफ्ता खातून से शादी नहीं करोगे, जो पुराने ज़माने में हो चुका सो हो चुका, क्योंकि वालिद की मनकूहा से शादी करना फहाशी है, मक्तन है, नहायत गंदा काम है, वसा सबीला और नहायत बुरा रास्ता है। तीन इल्लतें हैं हुरमात, यानी जिन खवातीन से शादी करना हराम किया गया है उनकी तीन इल्लतें हैं। तीनों को समझ लीजिए, ये अगले सारे कानून में जारी व सारी है। फहाशी का मतलब क्या होता है? जना। तो गोया बाप की मनकूहा से शादी करना निकाह के बाद भी जना वाली कैफियत है, यानी नाजायज़ ताल्लुक़ है, गलत ताल्लुक़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है, और इसमें बेहयाई पाई जाती है। बाप की मनकूहा, सुतेली माँ, मैं उस माँ के रहम से नहीं हूँ, मेरे बाप की वो कोई और खातून है जिससे उन्होंने शादी की थी, मेरी वालदा नहीं है, तो मेरे लिए वो हराम हो जाएगी। वजह क्या बताई? कि ये फहाशी है, ये बेहयाई का काम है, ये नाजायज़ काम है। वह मक्तन, और ये इतना बुरा काम है कि जिसको देख के घिन आती है, नहायत गिरी हुई हरकत, नहायत बुरा काम। तो ये नहीं होना चाहिए कि आदमी अपने बाप की मनकूहा से शादी कर ले, नहायत गलीज काम, नहायत गंदा काम है। वसा सबीला, और ये बुरा तरीका है। ये तो घर में जो तकद्दस कायम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मक्तन में गंदा काम क्या होता है? नापाक काम, उसके अंदर गलाजत भरी हुई है, उसके अंदर गंदगी है, कराहत है, ये सारा कुछ होता है। तो जो कराहत वाले काम हैं वो क्यों हराम होते हैं? इसलिए कि उनमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो काबिले कबूल नहीं है किसी भी तौर पे, ना मुआशरे के लिए, ना अफराद के लिए। तो इसमें जो गंदी चीज़ें होती हैं उसमें नापाकी आ जाती है। तो नापाकी किस चीज़ का उलट है? तहारत का, पाकी का, तकद्दस का। तो माँ और बेटे में एक तकद्दस कायम है। ये तकद्दस जो है वो आगे नोट करते जाएंगे, लेकिन मैं पहले शुरू में बता देता हूँ कि तकद्दस पांच चीज़ों से कायम होता है। रहम से, रहम, रहम मादर जिसको हम कहते हैं। तो इसकी वजह से ऊपर की जितनी रहमी रिश्ते में ऊपर जितने लोग हैं वो हराम हो जाएंगे। मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी परनानी, ये रहम की वजह से हराम हो गए। इसको हम कह लें कि रहम का सीधा डायरेक्ट असर जो है वो ये पड़ेगा। फिर रहम का इश्तराक होगा। तो मेरी बहन मेरे लिए इसलिए हराम है कि वो मेरी माँ के रहम शरीक भाई बहन है मेरी, ठीक है? तो इस तरह के रहम भी हराम कर देगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक रहम में ऊपर से नीचे तक की पूरी लाइन, नानी, परनानी, नानी, माँ और उनकी बेटी आगे चले जाएं तो ये हराम हो जाएंगी। और दूसरा ये कि इश्तराक हो गया है, यानी लाइन में तो नहीं है, ऊपर से नीचे तो नहीं आ रहा, नानी पर नानी माँ नहीं, इश्तराक हो गया है, तो भाई के लिए बहन हराम हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही रहम से हैं, ठीक है? और भांजे के लिए खाला हराम हो जाएगी क्योंकि वो माँ की इश्तराक रखती है रहम में। मेरी खाला मेरी वालदा के साथ इस तरह के रहम रखती हैं, तो इसलिए मेरे लिए हराम हो जाएंगे। रहम की वजह से दो रिश्ते हराम हो गए, एक वो जो पूरी लाइन बन रही है असल से फरा में कि नानी पर नानी नानी माँ ये हराम है बेटे के लिए, और यानी पड़पोते के लिए, पोते के लिए, बेटे के लिए, ये सारी हराम है। और फिर इस तरह के रहम है, इस तरह के रहम दो लेवल्स पे हैं, एक माँ के साथ खाला का रहम, खाला और वालदा दोनों हराम हो गई, और फिर मेरे बहन भाइयों के दरमियान मैं और मेरी बहन एक दूसरे के लिए हराम हो गए। तो ये इस तरह के रहम हो गए, ऐसा ही सुलभ में है बाप की तरफ से। तो उधर भी लाइन पूरी है, परदादा दादा और वालिद बेटी के लिए, पोती के लिए, पड़पोती के लिए हराम है, ठीक है। दादा परदादा दादा वालिद बेटी पोती और पड़पोती के लिए हराम है, उसी तरतीब से। फिर इस तरह के रहम, इस तरह के सुलह भी हो जाएगा, मुश्तरक एक ही बाप के से दोनों जो बहन भाई हैं वो हराम हो जाएंगे, जैसे वहाँ एक ही माँ से दो बहन भाई हराम हो जाएंगे, ऐसा ही एक ही बाप से दो बहन भाई आपस में हराम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं सुलह और रहम, जैसे सगे बहन भाई होते हैं बाप की तरफ से भी माँ, तो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया रहम और दूसरा हो गया सुलह, और इनमें दो तरीके से हुरमत कायम होती है। ये दो तरीके मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे चलकर बात वाजे होगी। तीसरी चीज निकाह है, ठीक हो गया जी, सुलह रहम निकाह। निकाह का मतलब है कि जब तक कोई खातून या किसी मर्द ने शादी की हुई है तो कुछ मसले पैदा होंगे। तो जैसे अभी हमने वालद के निकाह को पढ़ा कि वालद के निकाह करने से ही औरत हराम हो जाएगी बच्चों के लिए, ठीक है, हालांकि कोई सुलभी रिश्ता नहीं है, कोई रहमी रिश्ता नहीं है, सिर्फ बाप की मनकूह है वो, मेरा ना रहमी रिश्ता है उनसे, ना सुलभी रिश्ता है, ना कोई इश्तराक है सुलभ और रहम का, वो सिर्फ मेरे वालिद की मनकूहा है, वो हराम हो जाएगी। इसी तरह हम सब की बीवियाँ सबके लिए हराम हैं सिवाय हमारे, क्योंकि तो हमारे निकाह में, ठीक है। तो निकाह तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ खलवत है, निकाह के साथ खलवत, यानी मियाँ बीवी का बाहमी जो जौजियत का ताल्लुक है वो कायम हो चुका है, इससे भी कुछ चीज़ें हराम होती हैं, जैसे बीवी की बहन, बीवी की माँ, तो आगे चलकर आ जाएगा। तो बीवी की माँ उस वक्त हराम होगी जब इन दोनों मियाँ बीवी ने बाहमी खलवत इख्तियार कर ली, और फिर रजात, दूध पिलाने से जो रिश्ते कायम होते हैं। तो ये पांच चीज़ें हैं, ये आगे पूरे कानून में सरायत किए हुए हैं। अगर आप ये पांच चीज़ें समझ लेंगे तो आगे हुक्मों को समझना आसान हो जाए। ये असबाब हैं, ये इल्लत नहीं है। इल्लत वो तीन चीज़ें हैं, फाहिशा व मक्तन व साह सबीला, उनको भी सामने रखिए। तो गोया एक तरफ से इल्लतें हैं, एक तरफ से ये रिश्ते हैं, ये मिलकर हुरमत के कायदे बनते हैं, कुछ दायमी हैं कुछ आर्जी हैं, वो आगे चलकर हम चलते हैं। तो आगे फरमाया हुर्रिमत, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम कर दी गई हैं, रहम का कानून चल रहा है। व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, सुल्ब का कानून चल रहा है। मेरी माँ मेरे लिए हराम हो गई क्योंकि मैं उसके रहम से हूँ, वही नानी पर नानी और माँ वाला रिश्ता, और मेरी बेटी मुझ पर हराम है क्योंकि वो मेरी सुल्ब से, ठीक। व अख्वातुकुम, और तुम्हारी बहनें तुम पर हराम है क्योंकि उन्हें इस तरह के रहम है, वो या मेरे बाप की औलाद है या मेरी माँ की औलाद है। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ बाप की सुलभ से जुड़ी हुई हैं, बाप की सुलभ में इश्तराक है। मेरे वालिद की बहन क्यों हराम है, क्योंकि वो मेरे वालिद की सुलभ में मुश्तरक है, ठीक हो गया। व खालातुकुम, और मेरी वालदा की बहन खाला भी हराम है क्योंकि वो मेरी वालदा के साथ इस तरह के रहम रखती हैं। व बनातुल अख, मेरे भाई की बेटियां मेरे लिए हराम हैं, क्यों, वो बाप की तरफ से हैं तब भी वो सुल्ब का इश्तराक रखते हैं मेरे भाई, तो मेरी भतीजी में भी यही चीज़ आ जाएगी, भांजी में भी, जी हाँ भतीजी में, व बनातुल उख्त, और भांजी में भी यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि मेरी बहन की वो बेटी है तो मुश्तरक रहम है और सुल्ब भी मुश्तरक है। व उम्हातुकुम अल्लती अरदानकुम, और वो तुम्हारी वो माएँ भी हराम हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। वह अख़वातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी वो बहनें भी हराम हैं जो दूध पीने से बहनें बन गई हैं। अब ये दो तरह से बनेंगी, जिस खातून ने किसी को दूध पिलाया है उसकी सगी बेटियां भी रज़ाई बहनें बन जाएंगी, और जिन दो बहन भाइयों ने एक ही माँ का दूध पिया है हालांकि उनकी सगी माँ नहीं है, वो भी बहन भाई हो जाएंगे। और फिर जब दूध तो मुझे एक खातून ने पिलाया है, लेकिन उसकी बहन क्यों हराम हो गई है, और उसकी बेटी मेरे लिए क्यों हराम हो गई है, या किसी और बच्ची ने दूध पिया है तो वो मेरे लिए कैसे हराम हो गई है। इस जुमले की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुलब और रहम से रिश्ते हराम होते हैं वही दूध से हराम हो जाएंगे, क्योंकि होना चाहिए मुझे एक खातून ने दूध पिलाया, बस वो मेरी माँ है, उसकी बेटी से मेरा क्या ताल्लुक है। अब जो दूध में शरीक हो गई है, तो जैसे सुलब में शरीक हो रही थी, रहम में शरीक हो रही थी, वैसे ही दूध में शरीक होने से हुरमत कायम हो गई है। अब ये हुरमत कायम कैसे हुई है, हम तो बस खुदा के हुक्म पर चलते थे। जदीद तहकीकात, अभी और भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, उससे मालूम होता है कि दूध पिलाने से माँ के, दूध पिलाने वाली माँ के स्टेम सेल्स डायरेक्ट हमारे जिस्म में बगैर हजम हुए हमारे वजूद का हिस्सा बनते हैं, वो दिमाग के हिस्से बना रहे होते हैं, वो बहुत वाइटल किस्म के ऑर्गन्स हमारे बना रहे होते हैं, दूध पिलाने वाली वालिदा के स्टेम सेल्स। स्टेम सेल वो है जिससे आप अपना सारा कुछ ही बना सकते हैं, ठीक है जी। तो माँ के दूध से ये चीज़ बचपन में हमें हासिल होती है। तो रज़ात में भी सारे रिश्ते, क्योंकि रज़ात ने वही काम कर दिया है जो सुलब और रहम कर रहा है, रहम ही कहना चाहिए सुलब की बजाय, जो रहम का रिश्ता काम कर रहा था वही दूध का रिश्ता कायम कर देता है, क्योंकि दूध पिलाने से एक तरह के रहमी रिश्ता वजूद में आ जाता है वो स्टेम सेल्स की वजह से। ये दौरे जदीद में हमारी मालूमात हैं, लेकिन हम तो खुदा के हुक्म पर ही ऐसा कर रहे थे। व उम्हातो निसाएकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ भी तुम पर हराम हैं, ठीक है। अब ये निकाह से और खलवत से कायम होने वाले रिश्ते आ रहे हैं, इसको मुसाहरत का नाम दे दिया जाता है। तो जिस खातून से मैंने शादी की है उसकी वालदा दायमी तौर पर मेरे लिए हराम हो जाएगी, यानी वो मेरी माँ ही की तरह है। व रबाइबकुम अल्लती फ़ी हजूरकुम मिन निसाएकुम अल्लती दखलतुम बहिन्ना, और वो तुम्हारी बेटियाँ जो सुतेली हैं, यानी मैंने किसी खातून से शादी की, वो पहली शादी से उसके यहाँ कोई बेटी है, वो मेरे घर आ गई है निकाह करने के बाद, ये बेटी भी मेरे लिए हराम है अगर मैंने खलवत भी कर ली है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बताया था ना, खलवत खुद एक चीज़ है जो रुकावट डाल देती है, हुरमत कर देती है। अगर खलवत नहीं की गई, सिर्फ निकाह हुआ था और तलाक हो गई, खलवत नहीं हुई थी, तो अब ये दोनों औरतें हलाल हैं, हराम नहीं होंगी, ठीक। लेकिन अगर निकाह हुआ, खलवत हो गई, तो अब इस खातून की बेटी शौहर के लिए जिसने खलवत कर ली है हराम हो जाएगी दायमी तौर पर। फाइन लम तकून दखल तुम बहिन्ना, और अगर खलवत तुमने नहीं की है, फला जुनाह अलैकुम, तो फिर उस खातून की बेटी से शादी करने में कोई गुनाह नहीं है जिससे निकाह तो हुआ लेकिन खलवत नहीं हुई। वह हलाएलो अबनाएकुम अल्लज़ीना मिन असलाबिकुम, और तुम्हारे सुलबी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम हैं, यानी बहुएं जो हैं, शर्त लगाई है सुलबी बेटों की, यानी अब यहाँ पर भी निकाह हुआ है, खलवत का जिक्र नहीं हुआ, निकाह है और बेटा सगा है, इसकी बीवी से शादी नहीं हो सकती। मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी हो सकती है, उसकी वजह से मिन असलाबिकुम के अल्फाज आए हैं जो तुम्हारी सुल्ब से। तो ये सुल्ब का लफ्ज़ भी आ गया, रहम का लफ्ज़ भी आ गया, रज़ात का लफ्ज़ भी आ गया, और निकाह का लफ्ज़ भी आ गया। जितनी हुरमतें हैं उनके असबाब अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं। अब अगला जो हुक्म है वो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि अन व अन तजमाऊ बैन लुख्तैन, और ये भी हराम कर दिया गया है तुम्हारे लिए कि तुम एक आदमी दो बहनों से इकट्ठे शादी करें, ये भी हराम कर दिया गया। इल्ला मा कद सलफ, हाँ जो माजी में गुजर गया सो गुजर गया। इन अल्लाह काना गफुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाने वाला मेहरबान है। अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये इसमें एक रवायत भी है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल है फुकहा को भी और उलमा को भी, कि दो बहनों के जमा करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाला और भांजी और फूफी और भतीजी को भी एक आदमी एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकता। यानी मैंने एक खातून से शादी की, उसकी फूफी से भी साथ ही कर ली या उसकी खाला से भी साथ ही कर ली, तो ये नाजायज़ होगा। किस असूल पर? तो उसको समझ लीजिए, मैंने जो पांच चीज़ें बयान की थीं उनको ध्यान रखिएगा। क्या मैं अपनी खाला से शादी कर सकता हूँ? मैं अपनी फूफी से शादी कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि उनका और मेरी वालदा या मेरे वालद का इस तरह के रहम और इस तरह के सुलभ है। ठीक है, ठीक यही इस तरह के सुलभ भतीजी और भांजी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, भतीजी और भांजी में भी यही इस तरह के, जो मेरे लिए हुरमत कर रहा था खाला को, जो मेरे लिए मेरी फूफी को हराम कर रहा था, वही रिश्ता भांजी और फूफी में भी तो है, भतीजी और फूफी में और भांजी और खाला में। तो ये इस तरह के रहम एक तरफ मौजूद है जो बहनों में था। दो बहनों में क्या है? इस तरह के रहम ही तो है, क्योंकि दो, एक बहन और एक भाई भी शादी नहीं कर सकते, एक खाला और एक भांजा शादी नहीं कर सकता, एक फूफी और एक भतीजा शादी नहीं कर सकता। तो जो रिश्तों, ये इस तरह के रहम की वजह से हुरमत है, वो यहाँ मौजूद है दो बहनों के अंदर, वही दो बहनों के अंदर मौजूद है। अब कोई आदमी दो बहनों को अगर निकाह में लेकर आएगा तो ऐसे ही है जैसे उसने जो इस तरह के रहम उसको तोड़ा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको आर्जी तौर पर रखा है कि अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो तो फिर उसकी बहन से शादी हो सकती है या मर जाए वो। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एक बीवी मर गई है तो बहन से छोटी सी शादी कर देते हैं। तो ये जो इस तरह के रहम इसने और एक निकाह में उन्होंने सिर्फ आर्जी तौर पर हुरमत कायम की थी, तो मौत पर या निकाह टूटने पर वो हलाल हो सकती है। ठीक है, अब जो इस तरह के रहम खाला में और भांजी में है वही दो बहनों के अंदर मौजूद है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको तुम इकट्ठा नहीं करोगे, यानी खाला और भांजी को एक निकाह में इकट्ठा नहीं करोगे और भतीजी और फूफो को एक ही निकाह में इकट्ठा नहीं करोगे। अब जो माजी के कवानीन थे जो इनराफात हुए थे उस पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन अल्लाह काना गफुर रहीमा, अल्लाह ताला मगफरत फरमाने वाला मेहरबान है। तो ये जो रिश्ते हैं ये सारे के सारे अब हराम हैं। यहाँ ख्वातीन के पहलू से बयान किया गया है, मर्दों का ऑटोमेटिकली बयान हो गया है। यानी जब मैंने अल्लाह ने कहा कि माँ हराम है तो खुद ब खुद बेटी के लिए बाप। ठीक है, तो ये उलट रिश्ते खुद ब खुद यहाँ सारे मौजूद, तो उसको बयान करने के लिए दोहराना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये रिश्ते औरतों के लिहाज से बयान कर दिए गए हैं, इनके उलट मर्द भी हराम हो, बेटी के लिए बाप, ठीक है, और बनात बहन के लिए भाई, अखवात बहन की जगह पे भाई आ जाएगा, भाई की जगह बहन आ जाएगी, फूफी से चचा आ जाएगा, इस तरह करके सारे रिश्ते आ जाएंगे। वल मोहसनात मिनन निसा, और जिनके निकाह हुए हुए हैं वो औरतें भी हराम, अब निकाह भी आ गया। जो तो सारी चीज़ें जो हुरमत का सबब थीं वो बयान हो गई हैं, इल्लतें तीन हैं, सबब पांच हैं जो मैंने आपको काउंट करवा दिए। वल मोहसनात मिन निसा, और शादीशुदा औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं, इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, शादीशुदा औरत हलाल हो जाएगी उसको तलाक हो जाने के बाद या उसका शौहर के फौत हो जाने के बाद, बेवा होने के बाद। एक कायदा और चलता था, वो इल्ला मा मलकत अईमानुकुम है, कि अगर मिसाल के तौर पर किसी कबीले की या किसी कौम की औरत अपने घर में शादीशुदा थी लेकिन अब जंगी कैदी बन गई है, तो उसका पुराना निकाह टूटा हुआ समझा जाएगा। किताबुल्लाही अलैकुम, ये अल्लाह का कानून है तुम्हारे लिए फ़र्ज कर दिया गया है। किताब जो है वो यहाँ बिल्कुल वाज़े है, आप देख सकते हैं कि अल्लाह का कानून है तुम्हारे ऊपर। तो वो जो आयते हैं जिसमें नबी अकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वहाँ किताब भी इसी मानी में है, कानून के मानी में, शरीयत के मानी में। तो ये अल्लाह का कानून है जो तुम्हारे ऊपर नाफिज किया गया है। وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے جائز، یعنی ان خواتین کے علاوہ یا ان کے الٹ ان مردوں کے علاوہ باقی سارے مرد اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سارے لوگ حلال ہو جائیں گے۔ اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کی چاہت کرو گے اپنے اموال کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ جو بات ہم نے پچھلی آیتوں میں جو حرمات سے پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ تم بیوی سے کچھ نہیں لو گے، تو اس میں تھا کہ کیا تم الزام لگا کر واپس لو گے، اور تم کس واپس کیسے لے سکتے ہو کہ جب کہ تم ایک دوسرے پر کھل چکے ہو اور تم نے ایک میثاق غلیظ لے رکھا ہے۔ اس کو اب دیکھیے کہ مال کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ذالکم من تبتغوا باموالکم، تم ان کے علاوہ تمام عورتوں سے شادی کر سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ اپنے اموال کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو، وہ حق مہر سے لے کر زندگی بھر کا وہ خرچہ جو آیت نمبر 20 میں بیان ہو چکی ہے چیزیں۔ تو ایک شرط ہو گئی کہ یہ پیسے کے ساتھ معاملہ ہے۔ نکاح میں جب ہم کسی خاتون کو لیتے ہیں تو اس کی تمام مالی ضرورتیں شوہر کے کھاتے میں پڑ جاتی ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ حق مہر سے شروع ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کے اخراجات اور کھانا پینا، گھر، کپڑا لتا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین، صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کتنی پاکیزہ چیز بنا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ تم نے شادی کرنی ہے پاک دامن ہوتے ہوئے۔ دوسرے کو بیان کر دیا یاری آشنائی نہیں، یعنی شادی یاری آشنائی کی چیز نہیں ہے۔ تو محسنین، پاک دامنی کو اختیار کرتے ہوئے، اور غیر مسافحین، آوارگی کے لیے نہیں، شہوت کے لیے نہیں۔ محسنین سے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم جب شادی کرنے جا رہے ہو تو پاک دامن ہو گئے، زانی نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے، اور شادی کرنے جا رہے ہو تو زنا کی نیت سے نہیں، دوسری معنی یہ نکلیں گے، زنا کی نیت سے نہیں بلکہ پاک دامنی کی زندگی کے لیے۔ دو معنی ہو گئے، ایک یہ کہ جب میری شادی ہو تو میں پاک دامن ہوں، وہ خاتون بھی پاک دامن ہو، زانی نہ ہو، اور دوسری یہ کہ میں جو شادی کرنے جا رہا ہوں وہ پاک دامنی کے لیے کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آوارگی کے لیے نہیں، کہ اس کو استعمال کریں گے چھوڑ دیں گے، نہیں، یہ شادی نہیں ہوگی۔ غیر مسافین میں اسی بات کو نیگیٹو انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک پکے رشتے کے لیے ہے۔ فَمَسْتَتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو اب حق مہر کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم ان سے پھر فائدہ حاصل کرو گے اس کا ان کو اجر بھی عطا کرو گے فرض مقرر کرتے ہوئے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ پہلے تم نے ایک حق مہر مقرر کر لیا تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کانا علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حالات ایک سے نہیں رہتے، اس لیے اپنے حکمت کی وجہ سے اس نے اس میں نرمی کر دی ہے، وگرنہ اصل قانون یہی تھا کہ جو تائے پہ آ جائے وہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ مطلب اس جملے کا یہ ہے۔ تو یہاں روک لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔